أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب؟ क्या चाहता है तुम में से कोई एक कि हो उसके लिए एक बाग खजूरों का और अंगूरों का। अब ये किसकी मिसाल दी जा रही है? अगेन मैंने आपको बताया था कि रयाकार की एक और मिसाल भी आएगी, तो ये रयाकारी की एक और मिसाल है जो बहुत ज्यादा दिल दहला देने वाली है। इसमें क्या है, एक आदमी है, उसके पास एक बाग है। अल्लाह ताला पूछ रहे हैं क्या तुम चाहते हो कि तुम इस आदमी की तरह हो जाओ? वो आदमी कैसा है? उसके पास एक बाग है। ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई, बाग भी तो कितना अच्छा बाग है भाई, खजूरें भी हैं उसमें और अंगूर भी हैं। खजूर और अंगूर स्पेशल इसकी बात क्यों आई, इन दो चीजों की? इसमें और भी दरख्त है, क्योंकि जन्ना मैंने आपको बताया ना कौन सा बाग होता है, इसमें बहुत कसरत से दरख्त हो, इतने दरख्त है कि जमीन को छुपा लिया, घने दरख्तों वाला, खूब सब्जे वाला, खूब हरियाली वाला। लेकिन अलग से खजूर का लफ्ज आया, अलग से अनाब का लफ्ज आया, इसलिए कि ये फल जो है ना, ये खास तौर पे बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, इनकी न्यूट्रिशन बहुत होती है। खजूर का तो एक एक हिस्सा जो है ना, वो जिस्म का हिस्सा बन जाता है। तो बताने के लिए कि कितना वैल्यूएबल भाग था ये, ठीक है। और इससे ये भी पता चलता है, देखिए ये जो खजूर का दरख्त है ना, ये एक दो साल में नहीं लगता, एक दो साल में फल नहीं देने लगता, बहुत अरसा चाहिए होता है, बाज दफा 30-30 ईयर्स भी लग जाते हैं। और अंगूर की बेलों के लिए भी बहुत निगरानी, बहुत निगहदाश्त करनी पड़ती है। तो इससे क्या पता चला कि जिसका ये बाग होगा, इसका मतलब उसने बहुत टाइम स्पेंड किया इसके ऊपर, मेहनत की है, क्योंकि तभी जाके उसके पास खजूरों के दरख्त है ना, और अनाब भी हैं, अंगूरों के भी हैं, तो उसकी भी बहुत निगरानी चूंकि करनी पड़ती, तो उसने इसका मतलब एफर्ट बड़ी लगाई है, बड़ी मेहनत की है। तजरी मिन तहते हल अनहार, बाग इतना वैल्यूएबल है, पानी इसके नीचे से, देखिए बाग के लिए सबसे इसेंशियल थिंग क्या होती है, पानी ना, पानी देना है ना आपने। जो जो जिन लोगों को पौधे उगाने का शौक है, उनको पता होगा कि पानी के बगैर फिर अगर पौधे छोड़ दें आप कुछ अरसा, तो फिर क्या हाल होगा उनका। तो यहाँ पे नहरें बह रही हैं, नहरों का भी जाल है, आप सोचेंगे बाग कितना हरा भरा होगा ना। याहू फीहा मिन कुल्लि समरात, और इस बाग में हर तरह के फल हैं भाई, वाह कैसा अच्छा बाग है। इसमें नखील और अनाब ही नहीं है सिर्फ, और भी हर तरह के समरात, और समरात में क्या क्या आ जाता है, उसमें सब्जी भी आ जाती है, फल भी आ जाते हैं, ये सब चीजें आ जाती हैं। तो अब आप खुद देख लें कि ऐसे बाग के लिए फिर कितनी प्लानिंग चाहिए, कितनी मेहनत चाहिए, कितना माल चाहिए, यानी फिजिकली भी आपको मेहनत करनी है, फाइनेंशियली भी आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। आप थोड़े से पौधे ही लेकर आए अपने, जरा अपने जो लॉन है उसकी लैंडस्केपिंग कराएं, आप देखेंगे कितना पैसा लगता है ना। तो अच्छा, अब जब आप मेहनत लगाएंगे तो वक्त भी तो आपका लग रहा है ना, तो वक्त भी लगाया इस बंदे ने, इसका मतलब बड़ी मेहनत की जिसने ये बाग लगाया, ठीक है। अच्छा अब क्या हुआ, वो असाबहुल किबर, अब पहुंच गया उसको बुढ़ापा, यानी अब ये बूढ़ा हो गया। इससे क्या पता चला कि बाग जो है ना, समझने उसकी जिंदगी भर की कमाई है, सारी जवानी उसने इसमें ही घुला दी है, अब बूढ़ा हो चुका है। वाला हो जुर्रियत उन दुआफा, और उसकी औलाद है कमजोर। इसका मतलब या तो ये होगा कि भाई वो, यानी उसने काफी एज में आके उसने शादी की, बच्चे भी देर से हुए, क्योंकि देखिए अब खुद बूढ़ा हो गया, उसके बच्चे छोटे छोटे, तो सारी जिंदगी समझने उसने बाग को ही दे दी ना, बच्चे भी छोटे हैं, बच्चों के ऊपर ही इसका मतलब ये डिपेंड नहीं कर सकता, बल्कि बच्चे भी उस पर डिपेंडेंट है। और अगर आप सोचे, हर इंसान का एक ये होता है, जैसे अभी हमने बात की कि अपने बुढ़ापे के लिए कुछ ना कुछ सरमाया करके रखना चाहता है, इसीलिए आप देखते हैं ना रिटायरमेंट फंड्स होते हैं, ये होते हैं, क्यों होते हैं ये सब, इसलिए कि हर एक चाहता है कि बूढ़े होके मुझे किसी के ऊपर फिर पड़ना ना पड़े, बूढ़े हो जाऊं तो फिर मैं, मतलब जाहिर है उस वक्त तो इंसान फिर नहीं कुछ कमाइयां कर सकता, इंसान चाहता है कि बुढ़ापे के अंदर उसके लिए कुछ ना कुछ हो, उसने जवानी में ही कुछ बना के रखा हो। अच्छा अब इसके तो ये हाल है कि अच्छा अगर इंसान के पास कुछ और ना हो ना बुढ़ापे में, तो इंसान ये सोचता है कि चलो मेरे बच्चे हैं ये कुछ बन जाए कल को, ये बड़े होंगे तो चलो मैं इनके पास रहूंगी या मैं इनके ऊपर डिपेंडेंट होंगी। चलो एक औलाद को भी इंसान एक सहारा समझता है दुनियावी, ठीक है, लेकिन इसके पास औलाद जो है ना बहुत छोटी है। अब क्या हुआ, अल्लाह माफ फरमाए, कि सिर्फ असौबा एसौरुन फीही नारुन फहतरकत। फिर पहुंचे उसको एक बगोला, एक टोर्नेडो आ गया एक दिन, उसमें आग भी है। अब जो टोर्नेडो आया और उसमें आग भी हो तो सोचे क्या हाल होगा, फहतरकत, जल जाए। क्या जल जाए, वो बाग सारा जल गया, सारा बाग जल गया। सोचें इस बूढ़े की सिचुएशन, सोचें कि इस बंदे की हालत क्या होगी, उस आदमी पे किस कदर गम, कितनी मायूसी, कितनी हसरत, कितना डिप्रेशन होगा, जो इस वक्त आके बाजी हार गया जब उसको सबसे ज्यादा जरूरत थी जीतने की। उसके अपने हाथ पैर जवाब दे गए हैं, उसकी ताकत खत्म हो चुकी है, उसके बच्चे छोटे हैं, सब के सब इस बाग पे डिपेंडेंट थे, और आन की आन में बाग को आग लग गई और उसके पास कुछ भी नहीं रहा। तो अंदाजा करो ऐ लोगो, क्या तुम चाहते हो तुम इस तरह हो जाओ? यही हालत उसकी होगी जो रियाकारी से खर्च करता है। वो भी सोचेगा मैंने अस्पताल बनाया, मैंने फलां मस्जिद बनाई, मैंने इतना टाइम दीन के फलां काम को दिया, मैंने एक यतीम खाना खोल दिया था, मेरे बताने से, मेरे कहने से इतने लोगों को फायदा पहुंचा, इतने लोगों ने पढ़ लिया, इतने लोगों के घरों में दीन जिंदा हो गया। अल्लाह अकबर। और ये सारा अजरो सवाब मेरे लिए अल्लाह के पास जमा है, अल्लाह के पास मौजूद है, मैं तो वहां पे जाऊंगी और मैं वहां पे ले लूंगी ये सब कुछ, क्योंकि मेरी वजह से देखें कितने लोगों को फायदा पहुंचा है ना। इंसान ये सोचता है ना, दुनिया में खुद ही सोच के बैठा होता है। अल्लाह अकबर। लेकिन जब उसको बुढ़ापा आया, बुढ़ापा पता है क्या डिपेक्ट कर रहा है यहाँ पे, जब यानी वो अल्लाह के पास चला गया, क्योंकि बुढ़ापे में इंसान अब कुछ नहीं कर सकता ना, उसके अंदर ताकत ही नहीं रही, तो ये वो टाइम है जब वो अल्लाह के पास पहुंचा है, क्योंकि वहां पे इंसान की ताकत खत्म हो गई, अब वो कुछ नहीं कर सकता, वो चाहे भी तो नहीं कर सकता, उसके अंदर नहीं है ताकत के वो दुनिया के अंदर जाए और दोबारा कमाइयां करे, दोबारा कोई अमल करके ले आए। समझ आ रही है ना बात आपको? तो बुढ़ापा आ गया, अब उसकी औलाद भी कमजोर है, यानी औलाद भी वहां पे कोई काम नहीं आने वाली, और इधर देखा अपने नामा अमाल की तरफ तो सब जल चुका था, सब चीजों को वो एक तीली जो होती है ना माचिस की एक तीली, वो कितनी बड़ी बड़ी इमारतों को आग लगा देती है, इस तरह रियाकारी की एक तीली है जिसने उसकी सारी नेकियों को जलाया हुआ था। बुक खोल के देखी वहां पे, अरे इसमें तो कुछ भी नहीं रह गया, और मेरा हाल आज क्या है कि मैं तो पीछे जा ही नहीं सकता, अब तो कोई नेकियां कर ही नहीं सकता, मेरी औलाद भी मेरे किसी काम की नहीं है। इस बंदे की हसरत सोचो, सोचो इस बंदे को सोच के सोचो कि वहां पे उसका क्या हाल होगा जिसकी सारी नेकियां रियाकारी खा गई होगी, और इसने क्या सोचा था कि इस बुढ़ापे में मेरा ये बाग मुझे काम आएगा ना। इसी तरह इस बंदे ने ये सोचा था कि जब मैं अल्लाह के पास जाऊंगा तो ये सारी नेकियां मैंने जमा की तो हुई है, ये मुझे काम आ जाएंगी। वहां पे कहा जाएगा नहीं, वो जो तुमने वहां पे तारीफें ले ली थी बस ले ली, अब तो कुछ भी तुम्हारे लिए नहीं रह गया। तो वो जो उसने जवानी में जो उस बाग से फायदा उठा लिया, वो तो उठा लिया था जब वो वहां पे था, अब तो बुढ़ापा आ गया, यानी अब वो तो खत्म हो गया, वो टाइम खत्म हो गया, अब बुढ़ापे के टाइम पे उसके पास कुछ नहीं। तो लोगो सोचो ऐसे बंदे की कैफियत को, लोगो सोचो। क्या तुम इस हालत में जाना चाहते हो? तो फिर खुद को बचाओ रियाकारी से, खुद को बचाओ एहसान जिताने से, खुद को बचाओ अजियत देने से, खुद को बचाओ खाली हाथ रह जाने से, खुद को बचाओ उस दिन से जब ना जिस्म में कोई जान रहेगी, ना कोई कुव्वत रहेगी, ना दोबारा बाग लगा सकोगे। ये बाग किस चीज का है? ये नेकियों का बाग है, पता है आपको? ये इसमें ना नखील है, अनाब है, इसमें हर तरह के समरात है। इसे तरह तरह की नेकियां की थी, फलां की खिदमत कर दी, फलां का कर दिया, फलां का काम आ गया, कुरान की तरफ भाग रहा है, नमाज की तरफ, मगर रियाकारी, कहीं पे एहसान जता दिया, कहीं पे कोई और किसी को अजियत दे दी, सब जल गया, जल गया, जल गया। और इंतहाई बूढ़ा होके ये खुद खाली हाथ रह गया। इसने तो सोचा था कमाइयां खाऊंगा, कमाई खाने के वक्त में ही वो खाली दामन रह गया। तो ये जो इंसान सारी जिंदगी अपने बुढ़ापे के लिए जमा करता रहता है ना कि बूढ़े होके मेरी तो हड्डियों में जान नहीं रहेगी, तब के लिए मैं कुछ कमाई जमा कर लूं। तो एक वक्त वो भी आने वाला है जब वाकई वो बुढ़ापा आ जाएगा जो कयामत के दिन का, वो भी एक बुढ़ापा है, उसके लिए भी तो फिक्र करें ना, उसके लिए कुछ कमाई करके रख लो, जैसे आप आज अपनी इस दुनिया के बुढ़ापे के लिए सोचते। वो सेम ही तो है, क़यामत में भी तो हर ताकत छीन ली जाएगी, हर सहारा खत्म कर देगी वो दिन हर सहारा खत्म कर देगा। तो इस वाकये में ना बहुत बड़ी इबरत है, बहुत बड़ी इबरत है। नखील और आनाब बहुत बड़े बड़े नेकी के काम है, समरा और भी जितने भी और नेकियों के छोटे मोटे और भी कई काम है, लेकिन शायद कोई वक्त ऐसा आता है कि इंसान जो है ना मतलब ऐसी किसी ने मसलन हमसे कोई बदतमीजी कर दी, कोई गलत रिएक्शन हमारे सामने शो कर दिया, अब हम एकदम गुस्से में आ गए और हमने कोई ऐसी बात कह दी कि जो है ना मतलब सारा हमारा किया कराया पानी में मिल गया, या किसी ने कोई तारीफें कर दी, हम बड़े फूले नहीं समाए और उसके बाद हम और तेज हो गए कि ये तो भाई मेरी तो बड़ी तारीफें हो रही है, तो वो सारा उसका जो है ना रियाकारी के अंदर चला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान जन्नत के एक बालिश्त करीब रह जाता है, एक बालिश्त पता है ये एक हाथ, इतना करीब रह जाता है जन्नत से, मगर फिर वो ऐसी बात कोई मुंह से निकालता है नहीं, पहले तो इतनी नेकी ये काम वो कर रहा होता है ना कि जन्नत कितने करीब पहुंच गया, लेकिन फिर वो ऐसी कोई बात मुंह से निकालता है कि पिछला सारा किया कराया गारत हो जाता है और वो जन्नत में जाने की बजाय जहन्नुम में चला जाता है। तो जाना कितना कॉन्शियस रहे हर बात, कितना हमें डरने की जरूरत है। किस तरह हम सोच सकते हैं कि हम आज सेफ हैं, कुछ हम करके और हम सोचेंगे भाई हम वहां मैंने तो बड़ा कुछ कर लिया, कैसे सोच सकते हैं हम? ये किस बारे में रिवायत आती है आप देख सकते हैं, इब्ने कसीर में भी है, बुखारी शरीफ में भी है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला उन्होंने एक दिन सहाबा से पूछा, जानते हो ये आयत किसके बारे में नाजिल हुई? उन्होंने कहा अल्लाह ज्यादा जानने वाला है। आपने नाराज होकर फरमाया तुम जानते हो या नहीं, इसका साफ जवाब दो। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु उन्होंने फरमाया अमीरुल मोमिनीन मेरे दिल में एक बात है। आपने फरमाया भतीजे कहो और अपने नफ्स को इतना हकीर ना करो। फरमाया ये एक अमल की मिसाल दी गई है। पूछा कौन सा अमल? कहा एक मालदार शख्स की जो अल्लाह की फरमा बरदारी के काम करता है, यानी अल्लाह की फरमा बरदारी के बड़े काम कर रहा है, बड़े नेकियों के काम कर रहा है, फिर शैतान उसे बहकाता है और वो गुनाहों में मशगूल हो जाता है और अपने नेक आमाल को खो देता है, यानी उम्र भर नेकी करता रहता है लेकिन आखिरी उम्र में क्या होता है आके शैतान उसे ऐसा बहकाता है, ऐसा गुनाहों में मशगूल करता है कि वो अपनी सारी नेकियों को भी बर्बाद कर देता है। पता है ना कई गुनाह भी ऐसे हैं जो आपकी नेकियों को चाट जाते हैं, सारी नेकियों पे पानी फेर देते हैं। जैसे कभी कभी ऐसे होता है, शायद आपके साथ भी कभी हुआ हो, कि हम कोई ईमेल लिखते हैं या कोई चीज लिखते हैं, अगर सारी लिख लेते हैं एकदम पता नहीं क्या होता है हमसे कोई बटन प्रेस हो जाता है, वो पता नहीं किधर चली जाती है, वो डिलीट ही हो जाती है क्या, फिर हम अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं, अल्लाह कहाँ गई, उसको इतना तलाश करते हैं, इतनी मैंने मेहनत की, इतनी की, सेव नहीं की थी ना, सेव नहीं की होती तो वो सारा कोई या प्रोजेक्ट किया या कुछ किया, सेव नहीं हुआ और वो सब पता नहीं किधर चला जाता है, वो हमारी सारी मेहनत दोबारा, फिर हम इतना झुंझलाते हैं कि ये क्या हुआ। तो यही डिलीट का कोई बटन या कोई ऐसा बटन प्रेस हो जाता है कि सारी नेकियां कहीं गुम हो जाती हैं, मिलती ही नहीं है, वो बर्बाद हो जाती। तो इस बंदे ने भी शुरू में बड़े अच्छे काम किए, फिर उसकी हालत बदल गई, बुराइयों में फंस गया और अपनी नेकियों का जो ढेर था ना उसको खुद ही बर्बाद कर दिया। और उस वक्त जब उसको नेकियों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब वो अल्लाह के पास पहुंचेगा तो कुछ भी नहीं होगा उसके पास। जिस तरह एक शख्स है जिसने बाग लगाया, फल उतारता रहा, लेकिन जब बुढ़ापे के जमाने को पहुंचा, बच्चे छोटे हैं और खुद भी किसी काम के काबिल नहीं रहा, तो अब सारा जो जिंदगी का जो डिपेंडेंसी है ना, वो इस बाग पे, सिर्फ इस एक बाग पे, उसके पास और भी कुछ नहीं है, इसलिए कि उसने सारी जिंदगी अपनी लगाई ही इस बाग पे थी। मैंने आपको बताया ना, अपनी जवानी लगा दी, अपने पैसा लगा दी, सब कुछ तो इसी में इन्वेस्ट कर दिया, उसकी सारी इन्वेस्टमेंट एक आंधी चली और हरा भरा लहलहाता बाग एक सेकंड में राख का ढेर बन गया। तो अगर इंसान का खात्मा अच्छा ना हो, पहले वो नेकियां करता भी रहे, एंड अच्छा नहीं है, और एंड में उसने नेकियों के उसके ऊपर डिलीट का बटन दबा दिया, सारी नेकियां चली गई, और एंड में आके अब कैसे कर सकता है वो दोबारा, अब तो जिंदगी नहीं मिलने की। अल्लाह इस अंजाम से हम सबको महफूज रखना, अल्लाह हमें महफूज रखना, हम तो इतने कमजोर हैं ना, हमें अपने पता है ना, हम अपना आमालनामा देख सकते हैं, हमारे सामने तो हमारी बुक नहीं है ना अभी, कि मतलब कितनी हम नेकियां जाया कर चुके हैं, कोई है भी उसमें या नहीं, वो पता नहीं, हम यहाँ पे कितने फूले बैठे हुए हैं, लोगों से तारीफें इधर उधर ले रहे हैं कि हम तो बड़े अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं और हम खुद मुतमईन है, मैं तो वहां पे बच ही जाऊंगी, देखो मैं ये कर रही हूँ, फला तो कुछ करती ही नहीं है, फला तो ऐसे है, फला तो ये है, लोगों को तो पता नहीं क्या है, वो हमें क्या पता हमारी हालत कितने लोगों से भी ज्यादा बदतर हो, क्या पता वो जिनके ऊपर हम उंगलियां उठाते हो वो अपने किसी अमल की वजह से अल्लाह के यहाँ बख्शिश पा जाए, और हम कई अमाल को सोचें कि ये नकील और अनाद है, ये बड़े बड़े नेकियों के काम है, और लोगों के अंदर हम बड़े लीडर बन के बैठे हो, लेकिन वहां जाके हमारे पास कुछ भी ना हो। तजाले को युबय्यिनुल्लाहु आयात, इसी तरह अल्लाह बयान करता है तुम्हारे लिए आए थे, लअल्लकुम ततफक्करून, ताकि तुम गौर व फिक्र करो, तुम इस बात के ऊपर गौर करो, इस मिसाल पे गौर करो कि इस बात पे गौर करते, ये जो अल्लाह ताला ने बातें बताई है, अल्लाह ताला ने देखो इंसान को कहाँ ले जाके खड़ा कर दिया, जहां आज जिस सिचुएशन में इंसान नहीं है, अल्लाह ने वो उस बुढ़ापे में ले जाके हशर के मैदान में खड़ा कर दिया, उस वक्त क्या करोगे फिर तुम, तुम्हारा क्या हाल होगा, और उस वक्त कितना पछतावा, कितनी हसरत, कितना गम होगा उस जिंदगी पे जिसमें बस नुमाइश नेकियां करता रहा, दिखावे की करता रहा, समझता रहा कि सब कुछ मेरी आखिरत में जमा हो रहा है। हर दुआ करते रहे, नेकी करके बस बैठ नहीं जाए, मुतमईन नहीं हो जाए, आमाल देखे, हम सिर्फ वहीं तक फिक्र करते हैं जब तक हमें नेक आमाल करना होता है, नेक कोई भी काम नेकी का करना होता है, बस हम उतने जब कर लेते तो फिर हम बड़े मुतमईन हो जाते हैं, हालांकि उससे भी ज्यादा फिक्र उसको संभालने की होनी चाहिए, इसलिए कि अब तो मेरी इन्वेस्टमेंट लग गई है इसमें, अब तो मेरी मेहनत लग गई है इसमें, पहले फिक्र थी नेकी करने की, कर लिया तो अब इसको संभालने की फिक्र, इसलिए कि अब मैंने कुछ इसमें लगा दिया, तो इसलिए इसके ऊपर बिल्डोजर खुद नहीं फेर देना, ऐसी कोई बात, कोई ताना किसी को, कोई रियाकारी, कोई ऐसी चीज करके, या इन नेकियों के बाद कोई ऐसा अमल करके जिससे नेकी खत्म हो जाए उससे भी बचना है। एक लेक्चर है नेकियों को जाया करने वाले अमाल, आप इंशाल्लाह वो भी सुन लीजिएगा कि नेकियां किस तरह बर्बाद हो जाती। तो दुआ करते रहे, अल्लाह जैसे कोई बुजुर्ग थे वो दुआ करते थे, या अल्लाह मेरे हज को मेरे आमाल नामे में कायम रखना। के देखे कितनी प्यारी उनकी दुआ थी, कितनी गहरी बात है ना ये, क्योंकि हज किया उसके बाद ये ना और रियाकारी आ जाए कि मुझे मैं जो लोग हाजी साहब कहे अब तो मुझे लोग नेक समझे हैं, वो हज पे गई है, वाह भाई वाह हज करके आए हैं आप। यानी इंसान के एकदम दूसरों के नजरों में बड़ी बड़ा मेरा रोब हो जाएगा कि मैं कितनी नेक हूँ जो हज करके आई हूँ, मेरी क्या ही बात है। तो वो दुआ किया करते थे कि अल्लाह इसको मेरे आमालनामे में कायम रखना, ये ना हो कि हज तो कर लिया उसके बाद कब का हज मिट भी चुका, बंदा अपने आप को हाजी साहब सोचता रहे, दावतें खाता रहे कि मैं तो हज से आई हूँ। अल्लाह अकबर, इंसान कितनी नाजुक जगह पे खड़ा होता है और वो कितना अपने आप को मजबूत समझता है, कैसे कोई अपने आप को नेक समझ सकता है ना। हम कितने वल्नरेबल हैं सोचिए, हम कितने खतरे में हैं और फिर भी समझ नहीं आती कि इंसान कैसे सोच सकता है, इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता है कि मैं तो बहुत पहुंची हुई, मैं तो बड़ी नेक, मैं तो बड़ी फला, कैसे। जब तक हम अल्लाह के पास नहीं पहुंच जाते और वहां पे हमारा फैसला नहीं हो जाता ना, तब कोई अपने आप को कुछ भी ना समझे, वहां पे जाके पता चलेगा कौन कितने पानी में। हाँ जी, अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अनफिकू खर्च करो, मिन तय्यिबात पाकीज़ा चीज़ों में से, मा कसब तुम जो तुमने कमाई की है, जो तुम्हारी कमाई में से है। इसलिए कि इंसान ना क़यामत के दिन देखेगा, एक तरफ जहन्नम होगी, एक तरफ उसका आमाल नामा होगा, अल्लाह की अदालत में खड़ा होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खर्च करो, चाहे एक खजूर ही खर्च करो, लेकिन अल्लाह के रास्ते में दो जहन्नुम से बचने के लिए। तो खर्च करना कितना जरूरी है, हमें और सारे खर्च याद रहते हैं लेकिन एक अल्लाह के रास्ते में खर्च करना वो भूल जाता है। तो फरमाया नहीं, अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह ताला ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के फरमाया, पता है ये रब की तरफ से कॉल है, अलर्ट हो जाना चाहिए इस पे। और एक चीज ईमान है जिससे अल्लाह ने पुकारा, ना किसी के खानदान के नाम से पुकारा, ना इलाके के नाम से पुकारा, ना जुबान वालों के नाम से जुबान से पुकारा, फलान जुबान बोलने वालों, अरबी बोलने वालों, अंग्रेजी बोलने वालों, इसलिए कि अल्लाह के नजदीक इन पहचानों से कोई अहमियत नहीं है, इन पहचानों की कोई, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कौन सी जुबान बोलता है, कौन से रंग वाला है, कौन से इलाके वाला है, कौन से खानदान वाला है, कौन से मुल्क वाला है। ये हमारे नजदीक ये पहचाने बड़ी अहम है जिनको हमने सब कुछ बनाया। अल्लाह के नजदीक जो हमारी पहचान है ना वो ईमान है, और सबसे बड़ी अहमियत ईमान की है। काश हमारे नजदीक भी ये अहम बन जाए कि जिस ईमान की वजह से हम सब एक धागे में पिरोए हुए, हम सब कनेक्टेड है इस ईमान की वजह से, वरना तो सब बिखरे बिखरे रहेंगे, फला फला कौम के, फला फला मुल्क के। तो आज हम देखें, आज क्या दुनिया में मेरी और आपकी यही पहचान है जिस पहचान से अल्लाह ने हमें पुकारा, या हम ज्यादा अंग्रेज और या हम ज्यादा इंडियन और ज्यादा पाकिस्तानी और ज्यादा अरबी, या ये ज्यादा अपनी पहचान करवाते हैं या ईमान की पहचान करवाते हैं कि मैं एक मुसलमान हूँ, मैं एक ईमान वाली हूँ और यही नजर आती हूँ। अनफिको, उनको हुक्म दिया, किसने हुक्म दिया, ये अल्लाह का हुक्म है, अनफिको खर्च करो, किस में से खर्च करें या अल्लाह, मिन तय्यिबात पाकीजा चीजों में। क्यों? इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह पाक है और पाक को कबूल करता है, पाक के अलावा किसी कमाई को नहीं कबूल करता। यानी अगर आपने सूद की कमाई में से खर्च किया, शराब की कमाई में से खर्च किया और किसी हराम कमाई में से खर्च किया है, तो अल्लाह ताला उससे, जैसे कोई वो दिखाते हैं कि बड़े जी चोर था, इतना बड़ा डाकू है। उसके बाद जी शाम को वो गरीबों मस्कीनों के अंदर बड़ा खर्च करता है, बड़ा लुटाता है। और वो ऐसी कहानियां भी कोई रॉबिन हुड और फलाने की बनाई हुई कि जो है ना देखो वो कितने उनको हीरो बना के दिखाया था। नहीं, जो सदका, जो किसी को हेल्प, किसी को खैरात अगर हराम से की गई है, हराम माल में से निकाला गया, वो कबूल नहीं है। तय्यब में से निकालो, पाक में से निकालो। कमाई का सोर्स भी पाक हो और चीज भी पाक हो। ये नहीं कि जो चीज आप लोगों को दे रहे हैं वो हराम हो, वो भी हराम ना हो। तो दोनों चीजें ही सही होनी चाहिए, कमाई भी और चीज भी। माँ कसम, तुम जो तुम कमाते हो उसमें से, जो तुम्हारी मेहनत की कमाई है ना, चाहे तुम जॉब करते हो, चाहे तुम बिजनेस करते हो, चाहे तुम कोई ट्रेडिंग करते हो, जो भी तुम्हारी कमाई है उसमें से खर्च करो। वमिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्द, और उसमें से जो हमने निकाला तुम्हारे लिए जमीन में से। जमीन में से क्या क्या चीजें निकलती हैं? सोना चांदी निकलता है, मादनियात निकलती हैं, मिनरल्स वगैरह, ऑयल है, गैस है, पानी है, फसलें हैं, फल हैं, और अजनास हैं जो भी निकलती हैं वो। और इसी तरह फिर आप देखें ये फिशिंग वगैरह का जो काम है, माइनिंग का, माइंस का काम है, ये सब जमीन में से ही है ना चीजें निकल रही। तो इनमें से भी खर्च करो, यानी कोई अगर इनमें से कोई काम कारोबार करता है, कोई खेत है किसी के, जमीने हैं, उसमें फल लगते हैं या अनाज लगता है, उसमें से भी खर्च करें। क्योंकि तो ये निकाला अखरज ना, हमने निकाला है ये, ठीक है। तुम बीज डालते हो, तुम पानी देते हो, तुम सोचते हो कि मेरा है, मेरी मेहनत है। नहीं, निकाला हमने, तो तुमने उसी में से खर्च करना है जो हमने निकाला है। तुमने खुद तो नहीं निकाला ना। आन तुम तजराउ ना वो अमनाहनो, सूरह वाकया में अल्लाह ताला ने फरमाया तुमने तुमने इसको निकाला है, तुमने इसको पैदा किया, तुमने जरात जो भी तुम जमीन से वो निकालते हो, तुम उगाते हो या हमने उगाया है, तो अल्लाह ही उगाने वाला है, उसमें से खर्च करो। वला तयम्ममुल खबीसा मिन्हु, और ना तुम कसब करो, ना तुम इरादा करो, किसका? खबीस का। मिन्हु तुन्फिकून, उसमें से तुम खर्च करते हो, ताकि तुम उसमें से खर्च करो। तुम ये ना इरादा करो कि तुम खबीस निकाल के खर्च करो, इसमें से खर्च करो। यानी क्या मतलब है? जो रद्दी माल है, जो नकारा माल है, जो गली सड़ी चीजें हैं, फजूल चीजें हैं, बेकार चीजें हैं, उन चीजों में से नहीं सोचो कि मैं खर्च करूं। मजा ही ना। तो फिर इसका मतलब किस में से खर्च करना चाहिए? चौथा पारा शुरू होता है ना, लन तनालु बिर्रा हत्ता तुन्फिकु मिम्मा तुहिब्बून। तुम नेकी को पा नहीं सकते जब तक कि तुम उसमें से ना खर्च करो जिससे तुम्हें मोहब्बत है, जो तुम्हें बहुत अच्छी लगती है। रद्दी चीजें तो हमें नहीं पसंद आती, तो हम अपने लिए तो वो पसंद नहीं करते, लेकिन जब हम दूसरे को देने लगते हैं तो जो गंद बला घर से उठा के वो कहते हैं कि ये चलो फलां को दे देते, ये चलो अल्लाह के रास्ते में दे देते। तो ऐसा ना करो कि जब जैसे कपड़े बिल्कुल फट जाएं तो तब देने शुरू, जब जूते बिल्कुल नाकारा हो चुके हों तो तब अल्लाह के रास्ते में दे रही हूँ। इसलिए कि तुम ये नहीं सोचते कि तुम दे किसको रहे हो, ये वो उस साहिल को नहीं दे रहे तुम, जो तुम्हारे सामने हाथ फैला के खड़ा हुआ, तुम उसको नहीं दे रहे, तुम अल्लाह को दे रहे हो। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम इस खबीज का इरादा ना करो कि इसमें से खर्च करो। वलस तुम भी आखिरी इल्ला अन तुमिदू भी फी, और तुम खुद तो लेने वाले नहीं हो, हालांकि हालांकि तुम खुद तो लेने वाले नहीं हो इसको। यानी अगर तुम्हें ये दिया जाए खबीज जो है, यानी जो नापाक है, जो रद्दी माल है, जो ऐसी चीजें हैं बेकार सी, वो अगर तुम्हें दी जाए तो तुम खुद इसको लेना पसंद नहीं करोगे। सोचो तो सही, तुम लेना चाहोगे? इल्ला अन तुहमिदू फी, सिवाय इसके कि तुम चशम पोशी कर लो इसके बारे में। अगर तुम इग्नोर ही कर दो बिल्कुल, यानी अब क्या है, अगर अब जाहिर है अब इंसान कभी कभी इसलिए इग्नोर करना पड़ता है कि उसकी जरूरत होती है, या कभी इसलिए कि चलो अब ये मुझे दे ही रहा है तो मैं ले ही लेती हूँ, इवन तोहफा तक दुनिया में कई तोहफे होते हैं आपको ऐसे मिलते हैं जो कि आपको बिल्कुल नहीं पसंद, आप लेना नहीं चाहते, लेकिन फिर आप बस इस तरह से इग्नोर करके ले लेते हैं कि अब क्या किया जाए, दूसरा दे ही रहा है। चश्मपोशी कर लेते ना, आंख बंद कर लेते उस तरफ से, तो यानी तब तुम पकड़ ही लोगे उसको, चीज को, लेकिन वरना तुम अपने लिए तो कभी नहीं चाहोगे कि मैं ये चीज मुझे दी जाए। अल्लाह ताला ने पता है जो रोल्स है ना वो रिवर्स कर दिए यहाँ पे, ठीक है। आप थे देने वाले तो आपसे अल्लाह ताला ने फरमाया गंदी सड़ी हुई चीजें ना लोगों को दिया करो, जो तुम खुद नहीं लेना चाहते। उसके बाद अल्लाह ताला ने रोल को रिवर्स किया। सोचो कल को अगर तुम इस लेने वाले की जगह खड़े हो, इसलिए कि वक्त का कोई पता नहीं होता, याद रखे आज जो बादशाह है ना वो कल फकीर हो सकता है, तो आपको नहीं पता है कल मेरी सिचुएशन क्या होती है। अल्लाह ताला फकरो फाके से महफूज रखे, किसी के आगे हाथ फैलाने से महफूज रखे, मोहताजी से हम सबको महफूज रखे, लेकिन यू नेवर नो, आप अपने सामने देखते हैं, आज लोग एक दिन कुछ होते हैं और अगले दिन वो मोहताज होते हैं कौड़ी कौड़ी के, यू डोंट नो। कोई नहीं अपने ऊपर ये कह सकता जी हम तो इतने हैं तो हमारा तो हमेशा ऐसा ही रहेगा, किसी को कुछ पता नहीं। तो सोचो कि कल रोल रिवर्स हो जाएगा, तुमको यही चीज दी जाए जो आज तुम किसी को दे रहे हो, तुम किसी और के सामने हाथ फैला के खड़े हो जाओ और वो तुम्हारे हाथ में ये चीज रखते, तो तुम्हारी इज्जत नफ्स गवारा नहीं करेगी इसको लेना। दूसरा तुम्हें अपना रद्दी माल दे दे सदके में, खैरात में, जकात में, तो खुद बताओ तुम क्या फील करोगे। देखा है आपने कैसे अल्लाह ताला सिखाते हैं, कैसे अल्लाह ताला समझाते हैं कि देखो अब कैसा लग रहा है तुम्हें। इग्नोर करके ठीक है, अगर दिल नहीं चाह रहा बिल्कुल लेने को, फिर भी तुम अब तुम्हारी सिचुएशन ऐसी है कि तुम आंख बंद करके ले लेते हो, अदरवाइज तुम्हारा दिल बिल्कुल नहीं करेगा लेने का, तो फिर इसको क्यों ऐसे देते हो जो तुम खुद नहीं अपने लिए लेना चाहते। उस वक्त सोचो तुम्हारा दिल कैसे रो रहा होगा, मगर जुबान खामोश होगी और तुम बस चश्मपोशी कर लोगे। आलमू जान लो, क्या जान ले, अल्लाह इन्नल्लाह गनी हमीद, बेशक अल्लाह बेनियाज है, वो अपनी जात में तारीफ वाला है। वो देखना कोई ये ना समझे कि अल्लाह को जरूरत है, वो नहीं, वो तो बेनियाज है, उसको तुम्हारी किसी चीज की भी जरूरत नहीं, किसी चीज की भी जरूरत नहीं, वो तो खुद गनी है, खुद देने वाला है, सब उसके मोहताज हैं, तुम फुकारा हो, और वो हमीद है, खुद तारीफ वाला है, ऐसी हस्ती जो अपनी जात में खुद तारीफ वाली हो, तुम तारीफ करो ना करो उसकी तारीफ हो रही है। जैसे कोई चीज होती है ना, देखे आप अपनी किसी ग्रज की वजह से, मिसाल के तौर पे कोई बहुत खूबसूरत चीज है, अब आपका कोई ग्रज है उससे, जिस बंदे ने उसको बनाया, अब आप तारीफ नहीं करते, बस ऐसे ही करके चले जाते, लेकिन वो तस्वीर खुद बोल रही है कि वो कितनी खूबसूरत है, आप तारीफ नहीं भी करते तो वो थोड़ी उससे उसकी तारीफ नहीं हुई तो वो कुछ उसमें कमी आ गई। ये मैं ऐसे एग्जाम्पल से आपको बता रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि क्या खुद अपने आप में तारीफ वाला होने का क्या मतलब। तो अल्लाह की जात वो है कि कोई भी नहीं तारीफ करे ना, तब भी वो खुद इस काबिल और ऐसा है कि उस जैसे तारीफ किया गया, वो खुद ही अपने आप में तारीफ वाला है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, आमीन या रब्बल आलमीन।
या الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد